यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे नमः समस्त भूतानाम् आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। गीता प्रेस में कल्याण से किसी ने प्रश्न किया, कल्याण पत्रिका के विषय में, कि आप लोग ये परलोक पुनर्जन्म की बातें क्यों लिखते हो? क्योंकि कल्याण तो परमार्थ की तरफ ले जाने वाला पत्र है, भूत प्रेत आदि की चर्चा क्यों करते हो? तो इसके उत्तर में कहा है कि भूत प्रेत का प्रचार नहीं किया जाता है, बल्कि मनुष्यों को सावधान किया जाता है कि थोड़ी सी असावधानी से कहीं हम लोगों का आगे का जीवन बिगड़ न जाए। कहाँ कहाँ सावधानी रखनी चाहिए? तो पहले तो ये देखना चाहिए कि प्रेत योनि कैसे मिलती है। तो बताते, संसार में किसी प्राणी पदार्थ के प्रति बैर का भाव होगा, द्वेष का भाव होगा, या घोर आसक्ति होगी या ममता होगी, तो प्रेत योनि में जाना ही पड़ेगा। किसी से द्वेष रखकर मरने वालों को बड़ी पीड़ादायक प्रेत योनि मिलती है। किसी का अपराध हो गया हो तो मृत्यु से पहले पहले उससे क्षमा मांग लेनी चाहिए और अपने मन से द्वेष निकाल देना चाहिए, पहला। दूसरी बात है, अंतिम संस्कार शास्त्रोक्त विधि विधान से करना चाहिए। यदि शास्त्रोक्त विधि विधान से नहीं होते हैं तो उनको प्रेत योनि मिलती है। आजकल दिल्ली, कलकत्ता, बंबई, मद्रास जैसे महानगरों में संस्कार पूर्वक संस्कार नहीं होता, विधि पूर्वक अग्नि संस्कार नहीं होता, वो बिजली के द्वारा शवदाह होता है, उससे प्रेत योनि मिलती है। जो यहाँ भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, तामसी साधना करते हैं और तामसी खान पान करते हैं, वे प्राय प्रेत योनि में जाते हैं। इसलिए भूत प्रेत आदि की पूजा नहीं करनी चाहिए। शराबखोर, चोरी डकैती करने वाले, हत्यारी, व्यभिचारी, शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले, अधर्म के प्रचारक प्रेत योनि में जाते हैं। और ये सीधी बात है, जो आत्महत्या करते हैं वे निश्चित ही प्रेत योनि में जाते हैं। जिसकी किसी के द्वारा हत्या कर दी गई हो, वह जीव भी मरने वाले से बदला लेने के लिए प्रबल भावना से प्रेत होकर आता है। ये मुख्य कारण बताए हैं। प्रेत योनि से छूटने का उपाय क्या है कि प्रेतत्व निवारण के लिए तर्पण, श्राद्ध और विधि पूर्वक श्रद्धा के साथ ये अनुष्ठान करने चाहिए। जो श्राद्ध के अधिकारी हैं वे ही संपत्ति के भी अधिकारी हैं। पुत्र इसलिए अधिकारी नहीं है कि वो पुत्र है, बल्कि शास्त्र के अनुसार वो इसलिए अधिकारी है कि वो पिता की संपत्ति से पिता के लिए पिंडदान, श्राद्ध वगैरह करेगा, इसलिए अधिकारी है। आजकल जो पुत्र की संपत्ति पर मैं पुत्र हूँ इसलिए मुझे हिस्सा मिलना चाहिए, इससे उसको प्रेत योनि मिलती है। कौन आदमी प्रेत नहीं होते, ध्यान से सुनिएगा। जो परिवार में माता पिता गुरुजनों की आज्ञा का पालन करते हैं, सास ससुर की सेवा करते हैं, प्राणी मात्र का हित चाहते हैं, भगवान का नित्य प्रति भजन करते हैं, भगवान का नाम जप और भगवत स्मरण करते हुए वैराग्य पूर्वक रहते हैं, वे प्रेत योनि को नहीं जाते हैं। दूसरी बात है, जीवन में कुछ सावधानी रखनी चाहिए। क्या? एक तो अशुद्ध स्थान में, खुली जगह, मिठाई खाते समय, एकांत के अंधकार में और तालाब आदि के किनारे, पीपल, बड़, ताड़, खजूर आदि के नीचे रात्रि के समय, इन वृक्षों के नीचे, सुनसान जगह में, पेड़ों के और भी पेड़ के नीचे, श्मशान भूमि में, समाधि या कब्र के पास, कुएं बावड़ी के तट पर और चौराहे पर कभी मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। यहाँ त्याग करने पर प्रेत का आवेश हो सकता है, बचना चाहिए। जो मकान बहुत पुराने हो गए हैं, बड़े बड़े किले हैं, दुर्ग हैं, बहुत वर्षों से जो खाली पड़े हैं, उन मकानों में रात या दिन को नहीं जाना चाहिए और न उनमें रात्रि निवास करना चाहिए। यदि कभी कोई बहुत पुराना खंडर हुआ मकान किसी ने खरीदा हो तो पहले उसमें हवन कराओ, पूजन कराओ, रामायण पाठ, सुंदरकांड पाठ, भागवत सप्ताह आदि ऐसे कृत्य कराओ जिससे वहां प्रेत की शांति हो जाए। एक बार सेठ जी वहां गए थे, जब भाई जी को दर्शन हुए ना, उस जगह की घटना की, ऋषि आसाम में जहां भाई जी को दर्शन हुए थे भगवान के, रिसेडी कोई जगह है, जसेडी। तो वहां कई दिनों से रह रहे थे भाई जी, सेठ जी एक मकान में। तो कहा कि अब ध्यान करने के लिए चलते हैं, कि चलो तो कोई एकांत जगह देख के आओ। तो एक दो सत्संगी लोग गए कि एक मकान था, कोई नहीं रहता, एकांत है, वहां चलो। सेठ जी जाकर बैठे और उनको कहा कि भाई चलो ध्यान लगाओ। अब वो ध्यान लगाने बैठे तो थोड़ी देर में सेठ जी ने कहा चलो इस मकान को खाली करो। ये क्यों? क्यों? इसमें भूत प्रेत रहते हैं। बार बार मन को भगवान में लगाते हैं, लगता नहीं है, यहाँ भूत प्रेतों का निवास है, चलो दूसरी जगह देखो। फिर यूं करते करते कहा कि अब मकान में मत चलो, खुली जगह पर चलो। या फिर एक खुली जगह पर गए, वहां पर ध्यान लगाया तो फिर वहां ध्यान के अंदर भाई जी को दर्शन हुए। तो जो पुराने मकान वगैरह होते हैं उनमें जो है अकेला नहीं जाना चाहिए। अकेले तो नहीं थे पर सुने मकान में प्रेतों का निवास होता है। जिन स्थानों में जाने का मना किया जाता है और फिर यदि जरूरी काम से उन स्थानों पर जाना ही पड़ जाए तो भीतर में भगवान का नाम जप करते रहो। यज्ञोपवीत है तो गायत्री मंत्र का उपांशु जाप करते रहो। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि, ऐसे उसका जाप करते रहना चाहिए। और कोई न हो तो जोर जोर से भगवान का कीर्तन भी कर सकते हो, या ज्यादा नहीं आए तो भगवान को स्तुति पूर्वक बुला सकते हो, आइए महाराज, भगवान आइए आइए, प्रकट होइए। यदि कभी कोई अद्भुत आकृति दिख जाए या मनुष्य के रूप में कोई दिखे और उसके प्रेत होने की भीतर में घबराहट या संभावना हो तो भगवान का नाम और गायत्री मंत्र का जाप करने लग जाना चाहिए और अपनी तरफ से स्वयं पहल करके उससे बोलना नहीं चाहिए। और यदि वो बोले तो उसके सामने कभी क्रोध पूर्वक नहीं बोलना चाहिए, कारण कि प्रेत योनि तो क्रोध से भरे ही रहते हैं। हम यदि क्रोध करेंगे तो क्रोध से क्रोध टकराएगा तो उस प्रेत का हमारे पर असर पड़ेगा, इसलिए उसका हमारे पर असर न पड़े नम्रता से जवाब देना चाहिए। और यदि अपने पास कोई वस्तु हो और वो मांगे तो बिना किसी ममता के तत्काल उसको दे देनी चाहिए, इससे फिर प्रेत का हमारे पर प्रभाव नहीं पड़ता। परंतु एक बात है, किसी भी दशा में प्रेत से डरना नहीं चाहिए। डरना तो नहीं चाहते हैं, डर लगने लग जाए तो फिर जोर जोर से भगवान का नाम लेना चाहिए, प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए कि वे भगवान समस्त भयहारी सर्व समर्थ हैं। भय स्वयं भाग जाएगा लेकिन घबरा कर आप भागिएगा नहीं। छठी बात, कोई प्रेत देवता यदि आपसे कुछ अनुचित करने के कहे और कोई अपवित्र वस्तु दे या मांगे, कोई ऐसा धन या पदार्थ जो आपका है ही नहीं, तो नम्रता पूर्वक परंतु दृढ़ता से अस्वीकार कर देना चाहिए कि ना भाई क्षमा कीजिए ना। उसकी बात स्वीकार करने में बड़ी भारी हानि है। वह धमकावे तो भी अस्वीकार करो, अपना हित ही होगा। जो लोग प्रेत के पूजक हैं, तंत्र मंत्र करते हैं, टोना टोटका करने वाले हैं, उनसे सदा दूर रहना चाहिए, उनको मुंह नहीं लगाना चाहिए। कभी कभी ऐसी इच्छा होती है कि ये टोना वाले कुछ चमत्कार दिखाएं, कुछ इनसे हम भी बात सीखें, तो ऐसे करके इनसे परिचय मत बढ़ाइए। ऐसे आदमियों से अपरिचय ही अच्छा रहता है। अशुद्ध अवस्था में या भोजन कर या खाने के खाकर के, दूध पीकर या मिठाई खाकर बिना कुल्ला किए कहीं मत जाइए। एक तो अशुद्ध अवस्था में नहीं जाना चाहिए, एक खा लो दूध पी लो या मिठाई वगैरह खा लो तो कुल्ला किए बिना कहीं मत जाओ। अपने शरीर तथा वस्त्र को, अपने रहने के स्थान को शुद्ध रखना चाहिए। जहां हम सोते हैं बैठते हैं वहां रोज झाड़ू पोछा साफ रहनी चाहिए, क्योंकि प्रेत है वो सदा गंदगी में आकर रहा करते हैं। प्रेत सिद्ध करके उससे कुछ काम निकाल लेवे ऐसी इच्छा कभी नहीं करनी चाहिए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होता है। एक आदमी को देखा, मिले थे, उस आदमी ने खुद ने कहा कि मैंने प्रेत विद्या सीखी है, मैं प्रेत विद्या से भूत को बुला लेता था और मेरा कई काम भी किया लेकिन मैं बहुत कष्ट पाया हूं, ऐसा खुद ने कहा उसने। तो दूर रहना चाहिए। जो भगवान की शरण लेता है, भगवान का भजन करता है, उसे किसी का भय स्वाभाविक ही नहीं होता। उस व्यक्ति का देवता भी अपकार नहीं कर सकते। अतः भगवान की शरण लेओ, उनका स्मरण करो, नाम जप करो, कीर्तन करो और अपने मन में सबसे निर्भय बने रहो। किसी को प्रेत बाधा आती हो तो आवेश के समय पहले उससे नम्रता के साथ पूछिए कि भाई आपके पास जो प्रेत आते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं, वो बता दे तो उसकी मांग पूरी कर दो, कोई अन्न है कि वस्त्र है कि जल है। मांगने पर तुरंत दे देना चाहिए, अनुचित पाप की मांगे तो मत मानिए। जिस कमरे या मकान में वो व्यक्ति रहता हो और जिसको प्रेत बाधा हो, उस कमरे या मकान में अखंड भगवान नाम का संकीर्तन कराना चाहिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित जल है वो सब जगह छिड़कना चाहिए, थोड़ा थोड़ा जल उस व्यक्ति को देना चाहिए, उसके बिछोने पर छिड़कना चाहिए। गायत्री मंत्र से अभिमंत्रित गंगा जल नहाते समय उसके मस्तक पर डालना चाहिए और श्रीमद् भगवद गीता का 11वें अध्याय का 36वां श्लोक है, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहृष्यत्यनुरज्यते च रक्षांसि भूतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संगाः। इस प्रकार इस श्लोक का पाठ करना चाहिए और इसके द्वारा जो है जल को अभिमंत्रित करके रोगी को पिलाना चाहिए। एक ताबीज का यंत्र भी बताया, वो ताबीज भी उसको दे सकते हैं। इस प्रकार से प्रेत बाधा से व्यक्ति बच सकता है। अब बताते हैं कि पापी मनुष्य यमपुर कैसे जाते हैं, उसकी कैसी यात्रा होती है। जो भगवान के भक्ति से सर्वथा विमुख हैं वे लोग अनेक रोगों से दुखी रहा करते हैं। मरने से पहले उनकी मंदाग्नि होती है, मंदाग्नि से अन्न कम पहुंचता है, फिर चलने फिरने की चेष्टा कम होती है, नाड़ी रूप मार्ग कब से रुक जाता है, नेत्र प्राण रूप वायु से फट जाते हैं, काश श्वास से वो दबा रहता है, कंठ से घुरघुर शब्द की आवाज आती रहती है, मरता है तब भयंकर पीड़ा होती है मानो 100 बिच्छुओं का डंक मारा गया हो। वह बीच बीच में अपने भाई बंधुओं को पुकारता भी है। इंद्रिय समूह के व्याकुल और जड़ होने पर वह यमदूतों को देख करके बहुत घबराता है। जब श्वास अपने स्थान से चलायमान होता है तो पापी को एक क्षण का कष्ट भी कल्प के समान लंबा मालूम देता है। उसके मुख से लारें निकलने लगती है, प्राण वायु उसके नीचे के छिद्रों से बाहर चला जाता है, नेत्र भयानक हो जाते हैं और बड़े बड़े दांत वाले दंड पास लिए हुए यमदूत उसके पास आते हैं। फिर वो चिल्लाता है, हाय हाय करके चिल्लाता है। जब उसके शरीर में से प्राणवायु निकलता है तो एक अंगुष्ठ मात्र देह धारण करता है, अंगूठे जितना, इतो सो शरीर ले वायु में शरीर में घुस जाता है। यातनाओं को भोगने के लिए यमदूतों द्वारा घेर लिया जाता है। फिर यमराज जी के दूत उसको धमकाते हुए नरक के तीव्र मार्ग की तरफ ले जाते हैं और कहते हैं, शीघ्रम प्रचल दुष्टात्मन यास्यसि त्वं यमालयं कुम्भिपाकादि नरकांस्त्वां नयाम्यद्यमाचिरम्। ए पापी जल्दी चलो, हम तुमको यमराज के लोक में ले चलते हैं, वहां तुमको कुम्भिपाक आदि नरकों के अंदर भयंकर कष्ट देंगे। इन भयंकर वचनों को सुनकर कि वो घबराता है, हाय हाय करके रोता है और अपने पापों का स्मरण करता है। रास्ते में उसको कुत्ता काटता है, भूख प्यास से व्याकुल रहता है, कोड़ों की मार पड़ती है, यमलोक पहुंचता है, वासना से बंधा हुआ वह देह में पुनः प्रवेश की इच्छा करता है, भूख प्यास से पीड़ित रहता है। मृत्यु स्थान आदि में पुत्रों के द्वारा दिए गए पिंड को और मरते समय दिए दान को वो उस समय खाता है। इस पिंड को खाकर उसको थोड़ी भूख प्यास से तृप्ति होती है, अन्यथा उसको वहाँ खाने पीने के लिए कुछ नहीं दिया जाता। इसीलिए हमारे शास्त्र में पिंड दान की बड़ी महिमा है। अगर मृतक को पिंड दान नहीं दिया तो वो प्राणी बेचारा बहुत भूखा मरता है, कल्प भर प्रेत रूप में पड़ा रहता है, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता, बहुत दुखी होकर वहाँ इधर उधर वो घूमता रहता है और ऊपर उसके मार भी पड़ती रहती है। बिना भोगे कर्म क्षीण नहीं होते और यम की यातना भोगे बिना वह मनुष्य रूप को प्राप्त नहीं होता, इसलिए मृत्यु के उपरांत 10 दिन तक पुत्र द्वारा पिंडदान होता है। उन पिंडों को खाने से वह जीव चलने में फिरने में समर्थ होता है और यमराज जी के दंड को भी वो सह सकता है। 13वें दिन यमदूतों द्वारा बांधा गया वह प्रेत धर्मराज के मार्ग पर चलता है। यम मार्ग का विस्तार 86,000 योजन प्रमाण है। उस प्रेत को प्रतिदिन 243 योजन रात दिन चलाते हैं। वह रास्ते में अनेक विषैले जंतुओं द्वारा काटा जाता है, गड्ढों में गिराया जाता है, गहरा अंधकार मिलता है। वैतरणी नदी आती है, 100 योजन जो चौड़ी है उसमें बहुत गंदी गंदी चीजें रहती हैं। उसमें बड़े बड़े ग्रह और पक्षियां भी रहते हैं, सुई की नोक के समान कीड़े वहां पर जौ की तरह खाते रहते हैं। उसकी धारा में उसको बहाया जाता है, वहां वो चिल्लाता है, हे मेरे बाप, हाय मेरी माँ, ऐसे वो चिल्लाता है। और जो वो चिल्लाता है त्यों ही यमराज जी के दूत मुद्गरों से उसके मुंह के ऊपर चोट पहुंचाते हैं। महता पुण्य योगे ने मानुषम जन्म लभ्यते। अब वो वहां याद करता कि अरे कितना बड़ा मुझे मानव शरीर मिला था, कैसे कैसे मैंने पाप किए। तत्प्राप्य न कृतो धर्म कीदृशम ही मया कृतम, मैंने देखो धर्म को छोड़ करके कैसा मार्ग अपनाया। मया न दत्तम न हुतम हुताशने, तपो न तप्तम त्रिदशा न पूजिता, न तीर्थ सेवा विहिता विधान तो देहे देहिन क्वचिन निस्तरयत्वया कृतम। वो वहां पश्चाताप करता है कि मया न दत्तम, मैंने कुछ दिया नहीं, मैंने हवन किया नहीं, मैंने तपस्या की नहीं, देवताओं की पूजा की नहीं, तीर्थों में मैं गया नहीं, भगवान का स्मरण किया नहीं। अरे जीवात्मन, तूने तो ब्राह्मणों को और दुखियों को किसी को कुछ नहीं खिलाया, तो अब तुझे तेरा पाप का फल भोगना ही पड़ेगा। अपने आप को ही वो प्राणी अपने आप के लिए बोलता है। स्त्री के लिए पति सबसे बड़ा तीर्थ, सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ा व्रत, सबसे बड़ा धर्म है पति सेवा। किंतु जिसने पति की सेवा नहीं की है, वह विधवा होकर भी तप का सेवन नहीं किया है, वो भी इसी प्रकार वहां रोती विलाप करती रहती है कि ओहो मैंने पति की सेवा नहीं की। 17 दिन तक वो वायु के वेग से अकेला विकट मार्ग पर चलता रहता है। 18वें दिन वो सौम्यपुरी में पहुंचता है। उस नगर में बड़ा भारी प्रेतों का समुदाय रहता है। वहां विशाल वटवृक्ष है, वहां पर उसको थोड़ा विश्राम मिलता है। उस समय वो अपने पुत्र आदि के सुखों को याद करता है। स्त्री मुझे ऐसे भोजन कराती थी, पुत्र मुझे ऐसे करता था, गोद में खेलता था, ऐसे उनका सुख याद आता है। इतने में यमराज जी के दूत फिर उसको लात मार करके यमराज के पुर में ले जाते हैं। दान पुण्य न करने के कारण फिर वो वैतरणी नदी में गिरता है। शैलागमन, विचित्रपुर आदि नगरों को लांगता लांगता अंत में यमराज जी के मुख्य मार्ग में पहुंचता है। वह 44 योजन प्रमाण है। वहां चित्रगुप्त जो धर्मराज जी के महामंत्री हैं, उन पापियों की सब जानकारी बताते हैं और फिर यमराज जी की आज्ञा को पाकर कहते हैं। चित्रगुप्त बोलते हैं, अरे पापी दुराचारियों, तुमने अज्ञान धारण करके अहंकार से दूषित होकर के अनेक पाप इकट्ठे कर लिए। काम क्रोध और पापियों की संगति से तुम्हारे अंदर बहुत पाप पैदा हो गए हैं। अब तुमने जो जो पाप किए उसके अनुसार तुम्हारे यम यातना के लिए ये दंड निर्धारित किए गए हैं। इतने में यमराज जी के 2 प्रबल दूत, एक का नाम प्रचंड, एक का नाम चंडक, वो अपने साथ में लिए हुए और सेवकों को लिए हुए उसको पाश में बांधकर नरकों में ले जाते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार 84 लाख नरक हैं, लेकिन उनमें मुख्य तो भागवत के अनुसार 28 है। मनुष्य को अपने विविध पाप कर्मानुसार नरकों में घोर यातना दी जाती है ताकि ये शुद्ध हो जाए और फिर वो ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके ऐसी गलतियां न करें। इस विषय में ब्रह्मांड ब्रह्म पुराण में अच्छे अच्छे ऋषि मुनियों ने भगवान वेदव्यास जी से चर्चा की है, उस चर्चा का सारांश यहाँ दिया जा रहा है। ऋषि मुनियों ने वेदव्यास जी महाराज से पूछा कि पापी आदमियों का, पुण्यात्माओं का और दूसरे कर्मों का, कर्म करने वालों का क्या क्या जो है फल मिलता है, तो इस पर यमराज जी ये व्यास जी महाराज बताते हैं। यमलोक का मार्ग और भयानक यमदूत। व्यास जी ने कहा, हे ऋषियों सुनो, मैं तुमको प्राणियों की मृत्यु से लेकर आगे की अवस्था होती है उसका वर्णन करता हूँ, क्योंकि मनुष्य होने में जो कुछ सुख दुख होता है उसको तो प्रायः सब जानते हैं, पर वे इस बात को नहीं जानते कि यहाँ की हुई गलती का आगे कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए मैं आपको आज वही बात बताना चाहता हूँ। यमलोक और मनुष्य लोक के बीच में 86,000 योजन का अंतर है। उसका मार्ग तपाए हुए तांबे के भांति पूर्ण संतप्त रहता है। प्रत्येक जीव को यमलोक के मार्ग से जाना पड़ता है। पुण्यात्मा पुरुष पुण्यलोकों में जाता है, नीचाचरण करने वाला पापाचारी पापमय लोकों में जाता है। यमलोक में प्रधानतः है 22 नरक हैं, जिनके भीतर पापी मनुष्यों को अलग अलग यातना दी जाती है। उस यमलोक के मार्ग में न तो कहीं वृक्ष की छाया है, न तालाब है, न पोखर है, न बावड़ी है, न पुष्करणी है, न कूप है, न पौसले हैं, न धर्मशाला है, न मंडप है, न घर है, न नदी है, न पर्वत है, कोई ठहरने की जगह नहीं है। अभी आप कहेंगे कि आपने बताया ना कि वहाँ वृक्ष है, वो यमलोक के अंदर है। ये बता रहे हैं कि मनुष्य लोक से यमलोक के बीच के मार्ग के अंदर कोई ठहराव के लिए, विश्राम के लिए जगह नहीं है। मृत्यु के समय वात पित्त कफ से दूषित होने पर नाना प्रकार के कष्ट भोगते हैं। जिसने कभी मिथ्या भाषण नहीं किया, जिसने कभी दो प्रेमियों के प्रेम में किसी प्रकार बाधा नहीं डाली, जो आस्तिक हैं, श्रद्धालु हैं, वे लोग तो बहुत सुख से चले जाते हैं। लोगों को आश्चर्य होता है कि अरे बहुत आराम से थे, बहुत अच्छी बातें करते थे, चले गए। ऐसे पुरुष तो बड़े सुखपूर्वक चले जाते हैं। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में लगे रहते हैं, किसी की निंदा नहीं करते हैं, सात्विक भाव रखने वाले होते हैं, लज्जाशील होते हैं, ऐसे मनुष्य मृत्यु के समय कष्ट को प्राप्त नहीं होते। जो कामना से, क्रोध से, द्वेष से धर्म का त्याग नहीं करते, शास्त्र की आज्ञा का पालन करते हैं, जो सौम्य स्वभाव, ठंडे स्वभाव के होते हैं, वे भी मृत्यु के समय कष्ट प्राप्त नहीं करते। जो किसी भी जीव को उद्वेग नहीं पहुंचाते, वे मृत्यु काल में प्राण घातनी क्लेशमय वेदना का अनुभव नहीं करते। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया, उन मनुष्यों को मृत्यु काल उपस्थित होने पर बहुत ज़्यादा जलन होती है, तथा अन्न दान नहीं दिया उनको बहुत बड़ा भारी भूखा कष्ट सहना पड़ता है। पापी लोगों की मृत्यु के समय यमराज जी के दुष्ट दूत हाथ में हथौड़ी और मुगदर लिए जाते हैं। वे बड़े भयंकर होते हैं, उनके शरीर बड़े डरावने और शरीर से बड़ी दुर्गंध निकलती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांपता है, और वो मरने से पहले जब ये उसके प्राण लेने आते हैं, तब उनको देखते ही जोर से भाई, माँ, बाप, पुत्र, जो भी उसका प्यारा या सहारा लेने का भाव रखता है, उनको चिल्लाता है, चिल्ला के बोलता है। वाणी उसकी समझ में नहीं आती है, भय के मारे रोगी की आंखें झूमने लग जाती हैं, श्वास ऊपर उठ जाता है, देखने की शक्ति नष्ट हो जाती है, बड़ी भारी वेदना होती है, और वायु के सारे चलता हुआ, ध्यान से सुनिएगा, वायु के सारे चलता हुआ वो अपने ही जैसा एक दूसरा वायु प्रदान शरीर होता है, उस शरीर में उसको प्रवेश कराया जाता है। ये हमारा शरीर पृथ्वी प्रधान है और वो वायु प्रधान है, वायु प्रधान शरीर में उसको प्रवेश कराया जाता है और फिर उसको आगे ले जाया जाता है। वो शरीर माता पिता के गर्भ से उत्पन्न होने वाला नहीं होता, वो कर्म जनित होता है, वो यातना देह कहलाती है, वो यातना के लिए ही शरीर होता है। जैसे डॉक्टर लोग ऑपरेशन करते हैं तो अपना वो कपड़ा नहीं दूसरा कपड़ा पहनते हैं वो सब, और ऑपरेशन के बाद वो कपड़ा वापिस डालवाई रख देते हैं। इसी प्रकार से उसको वो दंड दिया जाता है तो उसका शरीर अलग होता है, उस शरीर से उसको दंड मिलता है। अंधकार पूर्ण वातावरण रहता है, अपार अत्यंत भयंकर पापियों का वो रास्ता होता है, वहाँ कुछ दिखता नहीं है। यमराज जी के दूत उनको दौड़ने के लिए बोलते हैं, खींचते रहते हैं, मुदगरों से पीटते हैं, दिखता है नहीं, डरावना मार्ग है, प्राणियों का बड़ा भय रहता है, बड़े विकराल मुख वाले, नाक मोटी मोटी नाक वाले, टेढ़ी टेढ़ी आँख वाले, ऐसे लोग वहाँ पर बीच बीच में उनको मिलते हैं और मारते रहते हैं। इन आयुधों से आग की लपट निकलती रहती है। पास सांकड़ और डंडे से भय पहुँचाने वाले ये यमराज जी के दूत आयु की समाप्ति होने पर उन्हें लेने के लिए आते हैं, और बेड़ी सांकल वज्र के समान कठोर होती है। यम किंकर क्रोध में उसको ले जाते हुए भयंकर रूप से पीटते हुए अपमानित करते रहते हैं, वो चिल्लाता रहता है, और कभी कभी तो यमराज जी के दूत उसके चारों तरफ इकट्ठे हो जाते हैं, कहीं चला न जाए। वो बेचारा जीव बड़ा दुखी होता है, भयभीत होता है, वो वहाँ लड़खड़ाता हुआ चलता है तो फिर उसके ऊपर यमराज जी के दूतों का प्रहार होता है। जिन लोगों ने दान नहीं दिया वे उस मार्ग पर जलते हुए पैर से चलते हैं। जीव हिंसक मनुष्य के सब और मरे हुए बकरों की लाश पड़ी रहती है, उनकी जली और कटी हुई चमड़ी से मेदे और रक्त की दुर्गंध आती रहती है। वे वेदना से पीड़ित हो जोर जोर से चिल्लाते चिल्लाते यमराज जी के मार्ग की तरफ चलते हैं। बड़े बड़े शस्त्रों से उनके शरीर को काटा जाता है, कुत्ते बाघ भेड़िए लपट लपट करके उसके शरीर को नोचते हैं। जो अपने ऊपर विश्वास करने वाले स्वामी मित्र अथवा स्त्री की हत्या करते हैं वे शस्त्रों के द्वारा छिन्न भिन्न और व्याकुल होकर यमलोक के मार्ग पर जाते हैं। इसलिए किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। जो निरपराध जीवों को मारते हैं या मरवाते हैं वे राक्षसों के ग्रास बनकर उनके पथ से यात्रा करते हैं। जिनके दूसरों की स्त्रियों पर दृष्टि खराब होती है यमराज जी के लोक में उनके साथ बड़ा ही दंड का व्यवहार होता है। यमराज जी के लोक में वहाँ पत्थरों लाठियों डंडों से मार मार करके उसको जर्जर किया जाता है। जो नराधम नरक की परवाह नहीं करते, ब्राह्मण का धन अनप लेते हैं, उनको मारते हैं, ब्राह्मण को गालियां सुनाते हैं, जो उन्हें सूखे काठ में बांधकर उनकी आंखें फोड़ी जाती है, तुमने ब्राह्मण का अपमान किया तो ये लो, उनके शरीर में पीप और रक्त पोत दिया जाता है, काल के समान गीद और गीदड़ उन्हें नोच नोच कर खाते हैं। ऐसी दशा में भी क्रोध से भरे हुए भयानक दूत उन्हें पीटते चिल्लाते यमराज जी के मार्ग पर लाते मार मार करके ले जाते हैं। ये रौरव नाम का नरक है। ऊंची नीची भूमि होने के कारण मनुष्य मात्र के लिए अगम्य होती है। तपाए हुए तांबे के भांति उसका वर्ण होता है, आग की चिंगारियां निकलती हैं। ऐसे कष्टप्रद मार्ग को घसीटते हुए वे लोग ले जाया करते हैं। यमराज जी के तीन दरवाजे हैं। बहुत बड़ी विशाल पुरी है, उसका विस्तार 1,00,000 योजन का है, वो चौकोर बताई जाती है। उसके चार सुंदर दरवाजे हैं, उसकी चार दीवारी सोने की बनी हुई है। और वो चार दीवारी 10,000 योजन ऊंची है, माने 40,000 कोस ऊंची है दीवारों। यमपुरी का पूर्व द्वार बहुत ही सुंदर है, वहां पर सैकड़ों पताकाएं फहराई जाती हैं, हीरे नीलम पुखराज मोतियों से वो द्वार सजाया जाता है, वहां गंधर्व और अप्सराओं के नाच होते रहते हैं। उस द्वार से देवताओं ऋषियों योगियों गंधर्वों यक्षों सिद्धों और विद्याधरों का प्रवेश होता है। उस नगर का उत्तर द्वार घंटा छत्र चंवर नाना प्रकार के रत्नों से सुसज्जित होता है। वहाँ बड़े सुंदर मांगलिक गीत गाए जाते हैं, ऋग्वेद आदि के सुमधुर शब्द होते हैं। महर्षियों का समुदाय वहाँ शोभा पाता है, बड़े बड़े पुण्यात्माओं का वहाँ प्रवेश होता है। धर्मज्ञ और सत्यवादी वहाँ बड़े आनंद से विराजते हैं। वहाँ सबके लिए जल की व्यवस्था, अग्नि की व्यवस्था, थके मांदे की सेवा करने वालों की व्यवस्था, दाता शूर माता पिता के भक्त ब्राह्मण सेवक गौ सेवक अतिथि सेवक वे सब उत्तर के दरवाजे पर विराजमान रहते हैं। अब आप लोग सोचेंगे कि यमराज जी की पुरी तो दंड देने वालों के लिए, ये अच्छे अच्छे कर्म करने वाले वहां कैसे आए? तो ये ऐसे ही आते हैं, इनको बुलाते हैं यमराज जी। यमराज जी अपने ऊंचे लोकों से ऐसे पुण्यात्माओं को बुलाते हैं और नारकी लोगों को शिक्षा दिलवाते हैं। जैसे आपने सुना होगा महाराज जी कई बार जेल में पधारते थे, बीकानेर में भी पधारे, जोधपुर में भी पधारे, नागपुर में भी पधारे, कई जगह जेलों में गए महाराज जी। तो नाम कोई सुनेगा, अरे स्वामी जी महाराज जेल गए। अरे जेल क्यों गए, कोई अपराध करके थोड़ी गए थे? अपराध करके नहीं गए, वो जेलियों को कैदियों को उपदेश देने के लिए गए। ऐसे ही ऐसे पुण्यात्माओं को, माता पिता की सेवा करने वालों को, ब्राह्मण गौ की सेवा करने वालों को, अच्छे अच्छे पुरुषों को ऊंचे लोग से ये बुलाते हैं यमराज जी कि भाई आप लोग आओ और नारकीय प्राणियों को समझाओ और कहो कि देखो तुम भी मनुष्य थे, हम भी मनुष्य थे, तुमने अपने कर्म को किस प्रकार से भ्रष्ट कर लिया, कैसी तुमको यातना दी जा रही है, ऐसे उनको समझाने के लिए लाते हैं वहां। तो यमराज जी की पुरी में आते हैं तब वहां पर ये चार दरवाजे, उनमें पूर्व और उत्तर दरवाजा है बताया। अब यमराज जी का दक्षिण दरवाजा है, वो बड़ा भयानक होता है, जीवों के मन में भय पैदा करने वाला होता है। उस द्वार पर तीखे तीखे सींग वाले प्राणी रहते हैं, क्रूर कांटे रहते हैं, बिच्छू रहते हैं, सांप रहते हैं, कीट भेड़िए व्याघ्र रींच सिंह गीदड़ कुत्ते बिलाव गीद ये सब वहां पर मौजूद रहते हैं। वहां रहन इन सब के मुख से आग की लपटें निकला करती हैं। जो व्यक्ति सबका अपकार करते हैं वे उस मार्ग से उस पुरी में प्रवेश करते हैं। जो ब्राह्मण गौ बालक वृद्ध रोगी शरणागत विश्वासी स्त्री मित्र और निहत्थे मनुष्य की हत्या करते कराते हैं और जो संयम से नहीं रहते हैं, दूसरों का धन हरण कर लेते हैं, धरोहर हड़प लेते हैं, जहर दे देते हैं, घरों में आग लगा देते हैं, दूसरे की भूमि अपनी बना लेते हैं, वस्त्र और आभूषण की चोरी करते हैं, दूसरों के छिद्र देख करके उनके प्रति क्रूरता का बर्ताव करते हैं, झूठ बोलते हैं, गांव को नगर को राष्ट्र को दुख देते हैं, झूठी गवाही देते हैं, कन्या बेचते हैं, अभक्ष्य भक्षण करते हैं और माता पिता को कटु वचन सुनाते हैं, अपने बड़ों का जो निरादर करते हैं, ऐसे महापातकी मनुष्य महापातकी जीव जो मनुष्य शरीर में पाप किए थे वे उस दक्षिण द्वार में जाते हैं और वहां से फिर उनको अनेक प्रकार के नरकों में भेजा जाता है। व्यास जी ने कहा कि देखो ऋषि, देखो मुनिवरों, वहां नाना प्रकार के हिंस जंतुओं और गीदड़ियों के शब्द सुनाई देते हैं, रोंगटे खड़े कर देने वाले वहां पर प्राणी रहते हैं, यमदूत उन्हें सांकड़ों से बांधकर घसीटते हैं, वे खून से लथपथ हो जाते हैं, फिर भी उन पर कोई दया नहीं होती है। उनका पार पाना, इतने कष्ट में पड़े रहते हैं, उनका पार पाना बड़ा मुश्किल होता है। कहीं कहीं पर लोहे के कीले उनके शरीर में आर पार कराए जाते हैं, कहीं वृक्षों से भरे हुए पर्वत होते हैं जहाँ से उनको ऊपर उठा करके नीचे धकेला जाता है। ऐसे मार्ग पर पापी आत्मों को यात्रा करानी पड़ती है। कहीं दावानल हो रहा है, कहीं खूब बर्फ जमी हुई है और उसके ऊपर लेटा लेटा करके उनको चलाया जाता है, कहीं कड़ाके की आग है तो कहीं कड़ाके की सर्दी है, ऐसे भयंकर वहाँ पर कष्ट होते हैं। कहीं धूली मिश्रित प्रचंड वायु चलती, भयंकर आंधी है, जैसे यहाँ आंधी आने पर तो छोटे छोटे मिट्टी के कण है, वहाँ पर पत्थर के पत्थर वायु के अंदर उड़ते हैं और वो सारे शरीर के अंदर पीड़ा पहुँचाते हैं। बिजली की गड़गड़ाहट होती है, बिजली के अंदर शरीर चला जाता है, बाण वर्षा से कहीं घायल किया जाता है, कहीं सूखी सूखी वायु चलती है। ऐसे समय में, ऐसे मार्ग में उस प्राणी को बहुत कष्ट दिया जाता है। निर्जन स्थान होता है, सब उस यातना को भोगने वाले होते हैं, वहाँ कोई किसी को बचाने वाला नहीं होता। प्रेतों का सा शरीर, उनके कंठ होठ तालू सूख जाते हैं, शरीर बड़ा दुर्बल होता है, उन्हें खाने को अन्न और पीने को पानी नहीं मिलता। वे हाथ जोड़कर दीन भाव से आंसू बहाते हुए गदगद वाणी से बार बार याचना करते हैं, अजय हमको कुछ दीजिए, हमको कुछ दीजिए, वो रट लगाए रहते हैं। उनके सामने दही खीर घी भात बड़े अच्छे अच्छे पदार्थ प्रस्तुत करते हैं, पर उनको मिलता नहीं, ललचाते रहते हैं, देते नहीं हैं। क्यों? कि तुमने कर्म नहीं किए इसलिए तुमको नहीं मिलेगा, और ललचा ललचा करके कष्ट देते हैं। फिर ये उपस्थिति क्यों दे, दही खीर बढ़िया खाने के पदार्थ वो देते दिखाते हैं बस, और देते नहीं है। यमराज जी के दूध क्रोध से लाल आंखें करके फटकारते हैं, तुम इन पदार्थों के लायक हो, तुमने कभी अग्निहोत्र नहीं किया, ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, और तुमने पाप करते समय बड़ी निर्भयता दिखाई, तुम्हारा धन आग में नहीं जला था, जल में नहीं नष्ट हुआ था, राजा ने छीना नहीं था, चोरों ने भी चुराया नहीं था, फिर भी तुमने धन का दुरुपयोग किया। तुमने गौ सेवा में कंजूसी रखी, तुमने साधु पुरुषों से सात्विक भाव से व्यवहार नहीं किया, अभक्ष्य भोजन किया, भक्ष्य भोज्य पेय लेय चोष्य ये सब प्रकार के पदार्थ तुमको मिलते थे, लेकिन तुमने इनका दान नहीं दिया। दान होम यज्ञ ब्राह्मण पूजन ये सब तुमने ठुकरा दिए, जाओ हम तुमको ये वस्तु कैसे दे सकते हैं। इस प्रकार से उनके मन में बड़ी पीड़ा होती है, और फिर वे उनको मार मार करके दंड देते हैं। यमराज जी उन प्राणियों को जब अपने पास बुलाते हैं तो जोर से फटकारते हैं। चित्रगुप्त धर्मयुक्त वचनों से पापियों को समझाते हुए कहते हैं, पापी हो, आपको जरा सा विचार नहीं आया, तुमने दूसरों के धन का अपहरण करने में जरा सा संकोच नहीं किया, अपना रूप अपना बल उसके घमंड में आकर के आपने स्त्रियों का सतीत्व नष्ट किया। जो अपना कर्म करता है उसको अपना फल खुद को ही भोगना पड़ता है, ऐसा आपने विचार किए बिना हम परिवार को पालते हैं, हम दूसरों की सेवा के लिए करते हैं, बोलने के लिए तो तुमने ये काम किया, लेकिन तुम्हारे अंदर परिवार का मोह भरा पड़ा था, अब तुम शोक क्यों करते हो, अपना कर्मों का फल तो तुमको भोगना ही पड़ेगा। ये देखो, ये बड़े बड़े राजा लोग मेरे समीप आए हुए हैं, इनके अंदर कितना बड़ा घमंड था, हमने आज वो नगर जीत लिया, हमने आज इतने आदमियों को मार दिया, आज इनकी क्या दशा हो रही है। तब उनको राजाओं की ओर दृष्टिपात कराते हुए कहते हैं, बोलो नरेशों, तुम लोगों ने प्रजा का विध्वंस किया कि नहीं, अपने राज्य के विस्तार के लिए तुमने कितने निहत्थे प्राणियों की हत्या की है, तुमने ऐसा पाप क्यों किया? केवल अपने अहंकार को बढ़ाने के लिए किया, प्रजाओं को कठोर दंड दिया, उसका फल अब तुमको भोगना पड़ रहा है। कहाँ तुम्हारा राज्य, कहाँ तुम्हारी रानियां, कहाँ तुम्हारे बच्चे, कहाँ तुम्हारा वो धन, और तुमको यहां पर इस प्रकार से कष्ट भोगना पड़ता है। अब वो पापी कभी राजाओं को देखता है, कभी औरों को देखता है, बहुत घबराता है। तब उन पापों की शुद्धि के लिए यमराज जी अपने सेवकों को आज्ञा देते हैं, ओ चंड, ओ महाचंड, ओ प्रचंड, इन राजाओं को, इन पापियों को ले जाओ नरक की अग्नि के अंदर, खूब इनको पकाओ, इनके सारे पाप उसके अंदर पक जाए, तब हमारे पास लेकर आओ। यमराज जी की आज्ञा का इस ढंग से पालन होता है, कोई वहां पर दया का नाम नहीं ले सकता, जैसे कर्म किया है वैसा दंड उनको भोगना पड़ता है। फिर जब वो शुद्ध होते हैं तब वो यमराज जी के सेवक आकर निवेदन करते हैं कि महाराज आपने जैसा आदेश दिया था उसके अनुसार हमने इनको ऐसे ऐसे दंड दिया है, तब लाओ हमारे पास लाओ। फिर वो अपने पास लाते हैं और यमराज जी उनको फिर समझाते हैं। ऋषियों ने पूछा, हे वेद व्यास जी महाराज, ये नरक क्या कैसे हैं, क्या क्या नाम है? तो कहा, नरकों के अनेक नाम हैं, अनेक प्रकार के हैं। महावीची नाम का नरक है, उसमें वज्र के कांटे लगे रहते हैं, उस कांटों के अंदर उसको लेटाया जाता है। जो व्यक्ति गऊ का वध करने वाला होता है वो 100,000 बरस तक महावीची नाम के नरक में रहता है। कुंभीपाक नरक होता है, वो 100,000 योजन है। वहां की भूमि तपाए हुए तांबे के घड़े से भरी होने के कारण ऊपर से उसका मुख तो छोटा है और अंदर से वो बहुत बड़ा है। उसमें गरम गरम बालू, गरम गरम तेल, गरम गरम अंगारे, इन सब के अंदर उसको तपाया जाता है। ब्राह्मण की हत्या करता है, पृथ्वी का अपहरण करता है, धरोहर को हड़प लेता है, वो इस कुंभीपाक नरक में जाता है। रौरव नाम का नरक होता है, वहां पर वज्रमय बाणों से वो भरा रहता है। 60,000 योजन का वो नरक है और उसमें मनुष्य जलते हुए बाणों में से बिंद कर यातना भोगता रहता है। जो आदमी झूठी गवाही देता है उसको इस प्रकार से वहां ईख के समान पिरोए जाते हैं। एक मंजूस नाम का नरक होता है, जो लोहे से बना हुआ होता है, उसमें वे डाल करके जलाया जाता है। जो निरपराध को दंड देने वाले होते हैं वो मंजूस नाम के नरक में जाते हैं। एक अप्रतिष्ठ नाम का नरक होता है, जो ब्राह्मण को बिना मतलब सताते रहते हैं, वे उस अप्रतिष्ठ नाम के नरक के अंदर गंदी गंदी चीजों में पड़ा रहता है, नीचा मुंह किया हुआ, ऊपर पैर किया हुआ। एक विलेपक नाम का नरक होता है, जो मदिरा पीने वाला होता है, वो उसके अंदर घोर अग्नि के अंदर जलाया जाता है। एक महाप्रभ नाम का नरक होता है, उसके अंदर एक शूल गड़ा रहता है और वो उस शूल के अंदर पिरोया जाता है। जो लोग पति और पत्नी में भेद डालते हैं अथवा पति और पत्नी आपस में लड़ते रहते हैं, भेद रखते हैं, मन के अंदर खिन्नता लाते हैं, क्योंकि दाम्पत्य जीवन है वो तो सुख शांति के लिए होता है, उसमें भी यदि इस प्रकार से भेद डाले हुए जीते हैं तो वो उस शूल के अंदर जाकर के पिरोए जाते हैं। जयंती नाम का नरक है, यहाँ लोहे की बहुत बड़ी चट्टान पड़ी रहती है। जो दूसरों की स्त्रियों का अपमान करते हैं और उनके साथ अनाचार करते हैं, उस चट्टान के नीचे उस प्राणी को दबाया जाता है। शालमली नाम का जो नरक होता है, उसके अंदर सुदृढ़ कांटे होते हैं और जो स्त्री अनेक पुरुषों के साथ रहती है उसे शालमल नामक वृक्ष का आलिंगन करना पड़ता है और उसके शूल उसके सारे शरीर में चुभे रहते हैं। जो लोग झूठ बोलते हैं, दूसरों को मर्म पहुंचाने वाली बात मुंह से निकालते हैं, मृत्यु के बाद यमराज जी के दूत उसके जीभ को काट लेते हैं और जो आसक्ति के साथ कटाक्ष पूर्वक पराई स्त्री को देख करके तरह तरह की बातें बनाते हैं। यमराज जी के दूत बाण मार करके उसकी आंख फोड़ते हैं। जो लोग माता पिता, माता बहन, कन्या, पुत्र वधू और बड़े बूढ़े, स्त्री बालक, इनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं, कटु वचन सुनाते हैं, उनकी भी इसी प्रकार से दुर्दशा होती है। 14 इंद्रों की जो आयु होती है तब तक उनको इस नरक के अंदर पड़ा रहना पड़ता है। जो लोग आपस में एक दूसरे को लड़ाकर उनमें आग पैदा करते हैं अथवा जो लोगों के घरों में आग लगा देते हैं वो महारौरव नाम के नरक में पड़ते हैं। जो लोग माता पिता मित्र की हत्या करने वाले होते हैं, विश्वासघाती होते हैं, वे महातामिश्र नाम के नरक में जाते हैं जहां जौ की भरी हुई रहती है, जौकें जो उसके शरीर को काटती रहती है। जो जौक यानी जौक से भरा रहता है। मित्रघाती मनुष्य है वो असीपत्र वन नाम के नरक में रहता है। ये 10,000 योजन है, इसमें तलवारें रहती है और एकदम जैसे वृक्ष में पत्ते रहते हैं ऐसे तलवारें, नीचे तलवार, ऊपर तलवार, दाएं बाएं तलवार, उसके ऊपर चलाया जाए तलवारें भी बिल्कुल गरम गरम तलवारें रहती हैं। तो तलवार का भी दुख है और उसकी गर्मी भी का भी दुख है। करम्ब बालुका नामक एक और नरक है जिसमें 10,000 योजन विस्तृत है और उसमें उस व्यक्ति को नाम नहीं दिया कि कौन जाता है उसमें, जो भयंकर उपायों के द्वारा किसी मनुष्य को जला देता है, जीते जी जला देता है, उस व्यक्ति को करम्ब बालुका नाम का नरक मिलता है। एक काकोल नाम का नरक होता है, जो व्यक्ति दूसरों को न देकर अकेला ही खा लेता है वो काकोल नाम के नरक में मर जाता है। जो दुष्ट आत्मा मानव दूसरों को न देकर अकेला ही मिष्ठान उड़ाता है, इनके साथ उड़ा लेता है, वह काकोल नाम के नरक में जाता है। जो लोग पंच यज्ञों का अनुष्ठान नहीं करते, जिनको ऐसा अधिकार है नहीं करते, वो कुडमल नाम के नरक में जाते हैं। और जो व्यक्ति अभक्ष्य भक्षण करते हैं, अपेय माने मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, वो महाभीम नाम के नरक में जाते हैं। जो मनुष्य अपनी कन्या बेचता है वह महावट नाम के नरक में जाता है, जहां वह नीचा मुख करके और गिराया जाता है। जो लोग बिना मतलब दूसरों को पीड़ा पहुंचाते हैं वे तिलपाक नरक में जाते हैं, जहां तिल के भांति उनको सिया जाता है, जो अब शरणागत की हत्या करते हैं, जो मित्रों की हत्या करते हैं, वे तैलपाक नाम के नरक में जाते हैं, जहां खोलता हुआ तेल भूमि पर बहता रहता है और उसमें उसको पकाया जाता है। ऐसे अनेक प्रकार के नरक बताए हैं ऋषि मुनियों ने। कहा महाराज, ये यमलोक तो बड़ा भयंकर होता है, आपने दक्षिण द्वार का वर्णन किया, अब बताओ महाराज किस उपाय से मनुष्य यमलोक में सुखपूर्वक जा करके रह सकते हो। तो भाई यह व्यास जी ने कहा कि जो लोग इस लोक में धर्मपरायण हो, अहिंसा का पालन करते हो, गुरुजनों की सेवा करते हो, देवता ब्राह्मणों की पूजा करते हो, स्त्री और पुत्र सहित जिस मार्ग से यात्रा कर सकें वो मैं तुमको बताता हूँ कि जो ब्राह्मणों को भक्ति पूर्वक यथाशक्ति वस्तु दान में देते हैं, जो ब्राह्मणों को, ब्राह्मणों में विशेषतः श्रोत्रिय ब्राह्मणों को, उनमें भी अच्छे अच्छे जो भक्ति पूर्वक रहने उन ब्राह्मणों को जो दान देते हैं, वे सुसज्जित विमानों द्वारा धर्मराज के नगर में जाते हैं। जो धर्मज्ञ पुरुष होता है, जिनकी आजीव का कुछ चलती नहीं है, ऐसे बिचारे दीनहीन दुर्बल व्यक्तियों की अपने तरफ से उनको किसी भी प्रकार से सहायता पहुंचाता है। भगवान विष्णु उनके लिए, भगवान विष्णु उनको गोदान का फल प्रदान करते हैं। जो व्यक्ति जूता, छाता, शैया, आसन, वस्त्र और आभूषण का दान करते हैं, वे दिव्य आभूषणों से अलंकृत हाथी, रथ और घोड़ों की सवारी से वहां यात्रा करते हैं और गंधर्व गण उसके स्वागत के लिए तैयार रहते हैं। कुएं, बावड़ी, सरोवर, दीर्घिका, पुष्करणिका इत्यादि जो खुदवाते हैं, उनके लिए यमराज जी के लोक के अंदर बड़ा भारी स्वागत होता है। जो दूसरों के उपकार के लिए फल और पुष्पों से सुशोभित विचित्र बगीचे लगाता है, वृक्ष लगाता है, शीतल छाया में दूसरों को देख करके प्रसन्न होता है, उस व्यक्ति को यमलोक के अंदर उज्ज्वल विमानों में बैठाकर अनेक प्रकार का सुख देते हैं। जो भूमिदान करने वाला होता है, वह उदयकालीन सूर्य के समान तेजस्वी विमान में बैठकर धर्मराज जी के वहां पर जाता है। जो गौ को देखकर मस्तक झुकाता है, जो गौ को भूखी देख नहीं सकता है और षटता और दंभ का परित्याग करके जो गाय का पालन करते हैं, वे हंस युक्त विमान के द्वारा यमलोक की यात्रा करते हैं। जो नियम पूर्वक अपने व्रत का पालन करते हैं, वे यमराज जी के लोक में सम्मान पूर्वक जाते हैं। भगवान विष्णु में जो भक्ति रखने वाले जितेंद्रिय पुरुष होते हैं, वे यमराज जी के लोक में आदर्श पुरुष के रूप में जाते हैं। समस्त प्राणियों के प्रति क्षमा भाव, सबको अभयदान, क्रोध, मोह और मद से मुक्त रहकर इंद्रियों को वश में रखते हैं। वे महान तेज से संपन्न पूर्ण चंद्रमा के समान विमान में विराजकर यमराज जी की पुरी की ओर प्रस्थान करते हैं। जो 1000 गौ का दान करता है, ब्रह्मा जी उसके लिए बहुत बड़ा स्थान रखते हैं। मुनियों ने कहा, महाराज आप तो धर्मों के ज्ञाता हो, माता पिता, पुत्र, गुरु, जाति वाले, संबंधी, मित्र वर्ग, इनमें से कौन मरने वाले प्राणी का विशेष सहायक होता है? लोग तो मृतक को, शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के भांति छोड़कर चले जाते हैं, फिर परलोक में उनका साथ कौन देता है? व्यास जी बोले, हे विप्रवरों, प्राणी अकेला जन्म लेता है, अकेला मरता है, अकेला ही संकटों को पार करता है, अपने कर्मों का फल अकेला भोगता है। पिता, भ्राता, माता, पुत्र, गुरु, स्त्री, जाति, ये कोई उसके साथ देने वाले नहीं है। घर के लोग मृत व्यक्ति के शरीर को काठ और मिट्टी के ढेले के भांति त्याग कर, 2 घड़ी रोकर, उसके लिए मुंह बनाकर चले आते हैं। वे सब लोग तो त्याग देते हैं, किंतु धर्म उसका त्याग नहीं करता। वो अकेला धर्म ही जीव के साथ जाता है। मनुष्य को सदा धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि मरने के बाद उसका साथ देने वाला एकमात्र धर्म ही है। ऋषियों ने पूछा, महाराज आपका ये धर्मयुक्त वचन बड़ा कल्याणमय है। हम ये भी जानना चाहते हैं कि ये शरीर किन तत्वों का समूह है? मनुष्य का मरा हुआ शरीर तो स्थूल से सूक्ष्म अव्यक्त भाव को प्राप्त हो जाता है, वो तो नेत्रों का विषय नहीं रहता, फिर धर्म कैसे उसके साथ रहता है? कहते हैं, भाई पृथ्वी वायु आकाश जल तेज मन बुद्धि आत्मा ये सदा साथ रहकर धर्म पर दृष्टि रखते हैं। वे समस्त प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के साक्षी बने रहते हैं। जब शरीर से प्राण निकल जाता है तब त्वचा हड्डी मांस रक्त इत्यादि शरीर को तो छोड़ देते हैं, पर वो जो धर्म के ऊपर दृष्टि थी ना वो धर्म से युक्त हो जाता है जीव, तब वो परलोक के अंदर उसको वहाँ पर जो है ये स्थान मिलता है। फिर पूछा कि महाराज ये जन्म कैसे लेता है, कि तो शरीर में जो पृथ्वी वायु आकाश जल तेज और मन के अधिष्ठाता देवता हैं वे सब अन्न ग्रहण करते हैं और अन्न ग्रहण करने के बाद फिर वो पुरुष में जाते हैं, फिर स्त्रियों में जाते हैं और फिर इसका जन्म होता है। मनुष्य यदि जन्म से ही धर्म का सेवन करता है तो सदा सुख का भागी होता है। यदि बीच बीच में कभी धर्म कभी अधर्म कभी धर्म कभी अधर्म ऐसा करता है तो सुख दुख सुख दुख ये भी इसके साथ होते रहते हैं। पापयुक्त मनुष्य यमलोक में जाकर कष्ट उठाने के बाद फिर यहाँ तिर्यक योनि में पृथ्वी पर जन्म लेता है। मोहयुक्त जीव अनेक प्रकार के जन्म लेता रहता है। पराई स्त्री के साथ जो कुकर्म करता है वो मनुष्य पहले भेड़िया होता है, फिर कुत्ता होता है, फिर सियार होता है, फिर गीद होता है, फिर सांप होता है, फिर कौवा होता है, फिर बगुला होता है। जो पापात्मा काम से मोहित होकर कोई विचार नहीं करता और बलपूर्वक स्त्री का सेवन करता है, किसी की स्त्री का, वह एक वर्ष तक कोयल होता है, नर कोकिल होता है, फिर मित्र गुरु और राजा की पत्नी के साथ में चलता है, सुअर होता है, फिर सुअर रहकर बगुला होता है, फिर चींटी बनता है, फिर वह अनेक योनियों में जाकर कृमि बनता है, कीड़ा बनता है, वहाँ पर 14 महीने तक जीवित रहता है और फिर पूर्व पापों का क्षय होने के बाद फिर उसको मनुष्य शरीर मिलता है। जो पहले एक को कन्या देने की प्रतिज्ञा करके फिर दूसरे को दे देता है वो मरने पर कीड़े की योनि को प्राप्त होता है, 13 बरस तक रहता है, फिर वह देव कार्य पितृकार्य न करके देवताओं और पितरों को संतुष्ट किए बिना ही मरता है, कौवा बनता है। ऐसे ऐसे कई पापों के कई कर्म बताए हैं। व्यास जी ने कहा कि देखो अब मैं आपको अंत में सारांश बता देता हूँ, अपने किए हुए पाप का प्रायश्चित कर मृत्यु से पहले पहले प्रायश्चित करना चाहिए। ज्यों ज्यों मनुष्य का मन पाप कर्म की निंदा करता है त्यों त्यों का शरीर अधर्म से दूर होता है। यदि धर्मवादी ब्राह्मण के सामने अपना पाप कह दिया जाए तो वह उस पाप जनित अपराध से शीघ्र मुक्त हो जाता है। मनुष्य जैसे जैसे अपने अधर्म की बात बारंबार प्रकट करता है वैसे वैसे वो अधर्म को छोड़ता चला जाता है, जैसे सांप केंचुले को छोड़ देता है। दान का भी बड़ा भारी महत्व है। जो अन्न दान करता है उसके साथ में धर्म तो अपने आप ही पैदा होता है। अन्न में संपूर्ण लोक प्रतिष्ठित है, अन्न से देवता पिता ऋषि सब प्रसन्न होते हैं, अतः अन्नदान को श्रेष्ठ माना गया है। स्वाध्यायशील ब्राह्मणों के लिए न्यायोपार्जित उत्तम अन्न का प्रसन्न चित्त से दान करना चाहिए। दान देने में लेश मात्र भी संकोच नहीं करना चाहिए, दान यथाशक्ति देना चाहिए ताकि दान देने के बाद दिल में कभी पश्चाताप न हो। अपने द्वारा उपार्जित खेती के अन्न में से छठा भाग राजा को देने के बाद जो शेष शुद्ध भाग बचता है वह अन्न यदि वैश्य ब्राह्मण को दान करे तो सब पापों से मुक्त हो जाता है। जो शूद्र प्राणों को संशय में डालकर और नाना प्रकार की कठिनाइयों को सह करके भी अपने उपार्जित शुद्ध अन्न को ब्राह्मण के निमित्त दान करता है वो पाप से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। जो कोई मनुष्य श्रेष्ठ वेद वेत्ता ब्राह्मण को हर्षपूर्वक न्यायोपार्जित अन्न का दान करता है उसके सारे पाप छूट जाते हैं। इस प्रकार पुण्यवान मनुष्य पापों से मुक्त होता है। अतः अन्याय रहित द्रव्य का उपार्जन करना चाहिए, उसी उपार्जन से मनुष्य का जीवन सुख शांति से व्यतीत होता है। जो मनुष्य वेद, न्याय, धर्म और इतिहास के ज्ञाता 100 विद्वानों को प्रतिदिन भोजन कराता है, वो कभी नरक में नहीं पड़ता है, संसार के बंधन में नहीं पड़ता है। इस प्रकार से पुण्य का भागी होकर मनुष्य आनंद का भागी हो जाता है। उसका रूप, उसकी कीर्ति, उसका धन अक्षय होता है। जो मनुष्य स्वर्ग से आए हुए हैं, उनकी पहचान क्या है कि ये आदमी स्वर्ग से आया है, ये आदमी नरक से आया है, इसकी पहचान क्या है? मार्कंडेय पुराण में लिखा है, दया भूतेषु सद्वाद है। जो सब प्राणियों में दया करता हो, जो अच्छी बात बोलता हो और परलोक के लिए शुभ कर्म करता हो, सत्य बोलता हो, संपूर्ण प्राणियों के हित की बात कहता हो, जो वेद का प्रमाण दे करके बोलता हो, गुरु है, देवता है, ऋषि है, सिद्ध है, इनकी पूजा करता हो, जो सत्संग करता हो, अच्छे क्रिया का अभ्यासी हो, जो सबके साथ मित्रता का व्यवहार करता हो, जो अच्छे कर्म को करने वाला होता है, स्वर्ग च्युतानाम लिंगानी, वो स्वर्ग से आए हुए प्राणी का चिन्ह होता है। इसी प्रकार नरक से आने वाले का क्या चिन्ह है कि जो पर निंदा करता है, जो कृतघ्नि होता है और पर मर्मावघट्टनम और दूसरों के गुप्त भेद को जो खोलने वाला होता है, जो बड़ा कठोर होता है, जो निर्दयी होता है, जो दूसरे की स्त्री पर कुदृष्टि रखता है, दूसरे के धन का हरण करने की सोचता है, जो कभी पवित्रता से नहीं रहता है, देवताओं में, भगवान में, इनमें दुर्भावना रखता है और छल कपट से मनुष्यों को ठगता रहता है, कंजूसी करता रहता है, मनुष्यों का, प्राणियों का वध करता है, वध करने में जिसको संकोच नहीं होता है, वो नरकाधनु मानना चाहिए कि वो नरक से आया हुआ प्राणी है। इस प्रकार से ये सब जो है, इसका सारांश बता दिया है। इसका इस सारांश ये है कि हमको हमारे कर्म पर विचार करना चाहिए। नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण नारायण
नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण
नारायण नारायण नारायण नारायण
श्रीमन्नारायण
नारायण
नारायण चंद्र की
जय
मोर मुकुट वंशी वाले
की जय।
कल मंगलवार है, कल सुंदरकांड का पाठ रखा है 3 बजे।